नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व को भारत की नीतियों से प्रभावी ढंग से अवगत कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में देश के पहले टू लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया निर्देश, कहा राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ तालमेल कर बाढ़ प्रबंधन के उपाय करें। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य लोगों की अंतरिक्ष यात्रा का एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर स्थगित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न देशों में पहलगाम के आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद का सफाये के संबंध में भारत के विचारों को प्रस्तुत किया, उस पर उन्हें गर्व है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों में विश्व के 33 देशों की यात्रा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की, जिसमें सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में अपने अनुभव साझा किए। विदेश भेजे गए चार प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने किया, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के दो, जनता दल यूनाइटेड के एक और शिवसेना के एक सांसद शामिल थे, जबकि तीन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व कांग्रेस, डीएमके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के सांसदों ने किया। राजधानी पटना को आज देश के पहले टू लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 422 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इस फ्लाईओवर से अशोक राजपथ पर यातायात सुगम हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
पटना स्थित देश के पहले टू लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर गांधी मैदान से पीएमसीएच होते हुए अशोक राजपथ, साइंस कॉलेज और एनआईटी को जोड़ेगा। इस अनोखे फ्लाईओवर से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। फ्लाईओवर के ऊपरी डेक की लंबाई 2175 मीटर जबकि निचले डेक की लंबाई 1449 मीटर है। इस पर उच्च तकनीक के ध्वनि प्रतिरोधक लगाए गए हैं। यह पुल कृष्णा घाट के पास जेपी गंगा पथ से भी जुड़ेगा। आने वाले दिनों में पीएमसीएच के मल्टी लेवल कार पार्किंग से भी इसे जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक राजपथ पर स्थित राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ तालमेल के निर्देश दिए हैं। देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री शाह ने कहा कि इससे जमीनी स्तर पर प्रारंभिक चेतावनी जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। श्री शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को राज्यों के साथ पूरे तालमेल और कुशलता से बाढ़ प्रबंधन की दिशा में काम करने को कहा है। समीक्षा बैठक में श्री शाह ने देश में बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों और सभी एजेंसियों की ओर से अपनाई गई नई प्रौद्योगिकी के विस्तार पर चर्चा की। राज्य में जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र अब डिजिटल रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नई नियमावली के आधार पर लोगों को डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे डिजी लॉकर में भी रखा जा सकेगा। मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नई नियमावली में किसी व्यक्ति का नाम जिस क्रम में होगा उसका पहला नाम और अंतिम नाम फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में एक एक मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्री परिषद से स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पहले चरण में कुल 9 मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राज्य में सुगंधित धान सोनाचूर की खेती के लिए रोहतास, कैमूर और बक्सर 3 जिलों का चयन किया गया है। सुगंधित धान की खेती इन जिलों की लगभग 1500 एकड़ भूमि पर की जाएगी। इधर राज्य कृषि विभाग के अनुसार अगले वर्ष से किसानों को धान की 2 उन्नत किस्मों के बीज दिए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि यह धान कम पानी में तैयार होता है तथा इसमें रोगों से लड़ने और सूखा सहने की क्षमता ज्यादा है। भारत में पिछले एक दशक में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों का पालन करते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में देश में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के कार्यों पर विशेष फीचर प्रस्तुत कर रहा है। इस क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार सुधारों और अन्य उपायों से प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम, सुरक्षित और सम्मानित बना है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने पिछले एक दशक में मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आवास, स्वास्थ्य सेवा से लेकर शहरी गतिशीलता और डिजिटल पहुंच तक सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी श्रेणी के अंतर्गत 1,16,00,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है और लगभग 93,00,000 घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन ने 7,545 स्वीकृत परियोजनाओं में से 93% को पूरा करके बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। बीते एक दशक में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 4 गुना बड़ा है। वर्ष 2014 में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत 625 मार्गों के माध्यम से 88 हवाई अड्डों का जुड़ाव हुआ है, जिसने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में से एक बन गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं जन औषधि केंद्रों की संख्या अब 16,000 से अधिक हो गई है। डिजीलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म से अब तक 52 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को जरूरी कागजात को साथ रखने की चिंता को दूर किया है। वहीं 8 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाला उमंग ऐप 200 से ज्यादा विभागों की सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवा रहा है। इसने लोगों के जीवन को सुगम बना दिया है। सरकार की ये सभी पहल भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग को गर्व, सुविधा और आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद कर रही है। रहीसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी ऐप या नमो ऐप पर शुरू किए गए जनमन सर्वेक्षण के पहले दिन देश भर से 5,00,000 से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों से पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा के सर्वेक्षण में शामिल होने का आग्रह किया था। यह सर्वेक्षण लोगों को सरकार के साथ अपनी प्रतिक्रिया और राय सीधे साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह सर्वेक्षण सुनिश्चित करता है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और भविष्य की नीतियों को बनाने में विचार किया जाए। पहले दिन ही 5,00,000 से अधिक प्रतिक्रियाओं के साथ यह सर्वेक्षण सीधे और सार्थक तरीके से लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शांत कुमार।
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार के साहसिक निर्णय लेने और नागरिकों के कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और अन्य वैश्विक रैंकिंग में भारत की महत्वपूर्ण छलांग शामिल है।
ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें आज भारत विश्व स्तर पर 160 से 62वें पायदान पर आकर खड़ा हुआ है। उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन, और मैं अगर एमसीए की बात करूँ, आज एक कंपनी ने नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो वो 3 या 4 दिन में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, क्योंकि एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। पहले जहां 4-4 महीने लगा करते थे, 6-6 महीने लगा करते थे एक कंपनी को एस्टेब्लिश होने में, इनकॉर्पोरेट होने में, आज 3 या 4 दिन में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से सबमिट हुए हैं तो 4 दिन में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य लोगों की अंतरिक्ष यात्रा का एक्सियम 4 मिशन एक बार फिर स्थगित हो गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स की ओर से आज इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, लेकिन फाल्कन 9 रॉकेट के परीक्षण के दौरान पाए गए तरल ऑक्सीजन के रिसाव को ठीक करने के लिए स्पेस एक्स की टीम को अतिरिक्त समय दिए जाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। नासा ने कहा है कि रॉकेट की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद इस मिशन की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होने वाले योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 50,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। यह सामूहिक भागीदारी के लिए एक नया मानक है। इस वर्ष का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो एकता और स्वास्थ्य के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान करता है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम योग संगम 2025 की मेजबानी 1,00,000 से अधिक स्थानों पर होने की उम्मीद है। आयुष मंत्रालय नागरिकों, संस्थानों और समुदायों को इस वैश्विक उत्सव में एक साथ आने के लिए आमंत्रित करता है। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, वहीं दक्षिण बिहार के जिलों में गर्म और आर्द्र दिन के आसार बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के यांत्रिकी विभाग के छात्रों ने तैरने वाला रोबोट विकसित किया है। ये नदियों को साफ करने में सहायक होगा। यांत्रिकी विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में तैयार ये रोबोट विशेष रूप से नदियों में तैरने वाले कचरे को पहचानने और उन्हें अलग अलग करके साफ करने में सक्षम है। कटिहार जिले में 3 दिवसीय 16वीं बिहार राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर बालक और बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। निगरानी की टीम ने छपरा नगर निगम के लिपिक सूर्य मोहन यादव को 60,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। कैमूर जिले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय झाली में चिकन पार्टी करने के आरोप में शिक्षा विभाग ने 11 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर लिखा है, महिला कर्मियों को दफ्तर के पास ही मिलेगा आवास, 4,00,000 महिला राज्य कर्मियों को होगा लाभ। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भीषण गर्मी में 8,303 मेगावाट का प्रदेश में बिजली की खपत का बना रिकॉर्ड। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विधानसभा चुनाव घोषणा की तारीख पास, राजनीतिक दलों ने शुरू की सीटों की प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रभात खबर की सुर्खी है, इस साल 1,46,00,000,000 हो जाएगी भारत की आबादी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व को भारत की नीतियों से प्रभावी ढंग से अवगत कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में देश के पहले 2-लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया निर्देश, कहा राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ तालमेल कर बाढ़ प्रबंधन के उपाय करें। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य लोगों की अंतरिक्ष यात्रा का एक्सियम 4 मिशन एक बार फिर स्थगित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।